नमस्कार दोस्तों, छुट्टी का दिन आया संडे और आपके संडे में शामिल करने थोड़ी जानकारी, थोड़ा फन, यानी आपके संडे को बनाने कंप्लीट फंडे आ गया हूँ मैं जगत, और मेरे साथ है प्रेमा प्रोग्राम नई दिशा में।
जगत, हम लोग इतनी गंभीर समस्या यानी HIV पर जानकारी देने कार्यक्रम नई दिशा लेकर आते हैं और तुम श्रोताओं को बोल रहे हो कि हम उनका संडे फंडे बनाने आए हैं।
क्या प्रेमा, तुम भी जानती हो तुम्हारी जैसी सोच के लोगों ने ही आज HIV को हवा बनाकर रख दिया है।
मेरी जैसी सोच के लोगों ने? तुम कहना क्या चाहते हो जगत?
वो नाराज क्यों होती हो प्रेमा, नाराज मत हो। देखो मैं तो बस ये बताना चाहता हूँ कि जिस HIV अवस्था से अपने आप को हम मात्र कुछ सावधानी अपनाकर बचा सकते हैं, उसे लेकर आज हमारे समाज में इतनी ज्यादा भ्रम, इतनी ज्यादा अफवाहें पैदा हो चुकी हैं कि लोग इसके नाम से भी डरते हैं और HIV संक्रमित व्यक्ति को भी भेदभाव की नजर से देखते हैं।
तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि समाज में आज भी HIV को लेकर जागरूकता के साथ साथ भ्रम फैलने का कारण इसका दुष्प्रचार ही है?
बिल्कुल, और मजे की बात यह है प्रेमा कि इस दुष्प्रचार को करने वाले लोग खुद HIV के खतरों और इसकी सावधानी से अनजान हैं।
यानी उन्हें भी HIV संक्रमण का उतना ही खतरा है जितना कि अन्य सभी लोगों को, मगर फिर भी वो बेकार इसके बारे में सारी जानकारी होने का दावा ठोकने से नहीं चूकते।
और आप भी दोस्तों अपने दिमाग में सिर्फ सही जानकारी को ही जगा दें, भ्रम को नहीं। आइए आज हम जानो अनजाने में HIV को लेकर कुछ ऐसे भ्रम के बारे में आपको बताते हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, गलत हैं।
जगत, कुछ लोगों का मानना है कि HIV का विषाणु शरीर में जाते ही, यानी किसी भी व्यक्ति के HIV पॉजिटिव होते ही उसकी मौत हो जाती है।
बिल्कुल गलत है। HIV पॉजिटिव व्यक्ति भी सामान्य व्यक्ति की तरह स्वस्थ जीवन जी सकता है। और इसके अलावा ये भ्रांतियां भी समाज में है कि HIV का विषाणु सिर्फ असुरक्षित शारीरिक संबंध बनाने से ही फैलता है और ये सिर्फ बुरे चरित्र के लोगों को ही होता है।
और दोस्तों, हम पहले भी कार्यक्रम में आपको ये बता चुके हैं कि HIV 4 कारणों से फैल सकता है। असुरक्षित यौन संबंधों से, दूषित खून चढ़ाने से, दूषित सिरिंज इस्तेमाल करने से और HIV पॉजिटिव माँ से उसके होने वाले बच्चे को। कोई भी व्यक्ति हो, राजा या रंक, अमीर या गरीब, अगर इन 4 बातों पर ध्यान नहीं देगा तो HIV का शिकार हो सकता है।
इसके अलावा HIV पॉजिटिव व्यक्ति से बात करने से, साथ खाना खाने से, उसके कपड़े इस्तेमाल करने से और उसका टॉयलेट इस्तेमाल करने से HIV नहीं फैलता है।
जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, बात करने से, छूने से सिर्फ आपसी प्रेम और भाईचारा फैलता है, HIV नहीं। और अगर फैलाना है तो सिर्फ जानकारियाँ फैलाइए, भ्रांतियाँ नहीं।
तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपके मन में भी अगर कोई भ्रम पहले HIV को लेकर था तो अब दूर हो गया होगा। और अब हम आपको लिए चलते हैं दूसरे सेगमेंट यानी भेजा फ्राई में।
दोस्तों, भेजा फ्राई आप सभी के लिए एक टेस्ट होता है जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि कार्यक्रम तो आप ध्यान से सुनते हैं ही, मगर इसके दौरान दी जा रही जरूरी जानकारियाँ भी आप याद रखते हैं या नहीं।
और इसीलिए हम इस सेगमेंट में हर हफ्ते आपसे पूछते हैं एक सवाल जो जुड़ा होता है कार्यक्रम में हमारे द्वारा दी गई जानकारियों से, और सही जवाब देने पर आपको मिलती है एक मस्त भेजा फ्राई कैप।
और पिछले हफ्ते का हमारा भेजा फ्राई सवाल था, HIV से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी एवं जांच के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? और सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी VCTC एवं ICTC केंद्रों में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं।
और हमारे एपिसोड नंबर 6 के विजेता हैं वजीह अख्तर हरिद्वार से। आपको मिलती है एक मस्त भेजा फ्राई कैप। और अब बारी है हमारे आज के भेजा फ्राई सवाल की।
और आज का सवाल है, HIV का वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद क्या प्रतिक्रिया करता है? एक बार फिर से सवाल सुन लीजिए, HIV का वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद क्या प्रतिक्रिया करता है? और आपके ऑप्शंस हैं, ए, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे नष्ट करता है, बी शरीर में जहर की तरह काम करता है, सी हमारी हंसने वाली कोशिकाओं को और ज्यादा जागृत करके हमें बेवक्त हंसाता है, और डी तुरंत ही हमारी जान ले लेता है। एक बार अपने ऑप्शंस फिर से सुने। ए शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे नष्ट करता है, बी शरीर में जहर की तरह काम करता है, सी हमारी हंसने वाली कोशिकाओं को और ज्यादा जागृत करके हमें बेवक्त हंसाता है, और डी तुरंत ही हमारी जान ले लेता है।
इस आसान से जवाब को देने के लिए आपको करना है बस एक आसान सा काम। अपना मोबाइल उठाइए, टाइप कीजिए ND9 भेजा फ्राई स्पेस आपका ऑप्शन ए बी सी या डी और भेज दें इसे 9717678223 पर।
दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, रिश्ता नया रहा दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई डो तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ।
और अब श्रोताओ कार्यक्रम में समय हो चला है आज के मेहमान से बात करने का।
डॉक्टर राजेश पाई, हमारे कार्यक्रम नई दिशा में आपका स्वागत है। हमारे श्रोताओं को अपना परिचय देंगे प्लीज।
नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजेश पाई है। मैं HIV फिजिशियन हूँ। पिछले 10 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और इस वक्त मैं एक इंटरनेशनल NGO एड्स हेल्थ केयर फाउंडेशन में एज अ HIV कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ।
डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि HIV के लिए किस तरह का टेस्ट करवाना पड़ता है।
HIV तो हम ब्लड में टेस्ट करते हैं, खून में जाँच करते हैं, एंड कई प्रकार के टेस्ट है। उनमें ELISA, DNA PCR, P24 एंटीजन और वेस्टर्न ब्लॉट, ये चार टेस्ट करते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, आम तौर से कौन सा टेस्ट किया जाता है और उस टेस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल से बताएंगे प्लीज।
आमतौर पे हम खून जांच करते हैं HIV के लिए, उसमें ELISA एक टेस्ट है, दूसरा है DNA PCR, तीसरा है P24 एंटीजन एंड चौथा है वेस्टर्न ब्लॉट। एंड उसमें ELISA इज वेरी बहुत आसान है करने में और सब जगह उपलब्ध है। ये खून के जरिए जांच करते हैं एंड उसमें भी रैपिड टेस्ट है जो जल्दी रिजल्ट देता है और वो आमतौर पे सब जगह अवेलेबल है, एंड उसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेन पर्सनल की जरूरत नहीं, कोई भी लैब टेक्नीशियन कोई भी नर्स ये कर सकती है। दूसरे टेस्ट है जो थोड़ी बहुत स्पेशलाइज्ड लैब्स की जरूरत होती है और उनके लिए ट्रेंड पर्सनल की जरूरत होती है, उसकी कॉस्ट भी ज्यादा है और सब जगह अवेलेबल नहीं है। तो जो आमतौर पर हम करते हैं जो ELISA टेस्ट, उसमें भी रैपिड टेस्ट करते हैं और रैपिड टेस्ट में अगर पॉजिटिव निकलता है फिर देन हम बाकी ELISA टेस्ट, दो टेस्ट और रन करते हैं। तो उसमें से ELISA कम से कम दो टेस्ट में पॉजिटिव आनी चाहिए टू डिक्लेयर अ पेशेंट पॉजिटिव।
डॉक्टर पाई, कौन सी परिस्थितियों में HIV टेस्ट करवाना जरूरी हो जाता है?
ऐसी व्यक्ति को जिनको कोई इन्फेक्शन है और वो जो ठीक नहीं हो रहा हो, जैसे TB की इलाज चल रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, या लंबी समय से बुखार चल रहा है कोई बिना कारण के, कोई और इन्फेक्शन मतलब आम इन्फेक्शन अगर नहीं है और फिर भी बुखार चल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को ज़रूर HIV टेस्ट लेना चाहिए। तो और ऐसे व्यक्ति को जिनको पहले कभी गुप्त रोग रहा हो और या इस वक्त डिटेक्ट हुआ हो, उनको ये टेस्ट ज़रूर लेना चाहिए। और आमतौर पर जो गर्भवती माँ हैं उनको भी ये टेस्ट रूटीन एंटीनेटल चेकअप में ज़रूर करवाते हैं।
HIV टेस्ट की प्रक्रिया क्या है?
जो व्यक्ति ये टेस्ट कराना चाहता है तो उसको सीधा ICTC सेंटर्स में जाना है और वहाँ पे उसको प्री टेस्ट काउंसलिंग दिया जाता है, एंड प्री टेस्ट काउंसलिंग के बाद अगर वो चाहता है ये टेस्ट करवाना तो उसे एक लिखित अनुमति लिया जाता है और उसके बाद ही उसकी जांच किया जाता है।
डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
तो श्रोताओं, ये थे हमारे आज के मेहमान। दोस्तों, कार्यक्रम में हर हफ्ते हम HIV और एड्स से जुड़े मुद्दों को लेकर बात करने के लिए ही मेहमानों को आमंत्रित करते हैं ताकि आप तक पहुँचे सही जानकारी। दोस्तों, आपकी राय और सुझावों का भी हम बेसब्री से इंतजार करते हैं और फिलहाल हम चलते हैं आपके खतों की ओर, यानी आपकी बात की ओर।
चिट्ठी आई है चिट्ठी।
दोस्तों, ये खत आया है मीठापुर से भीम सिंह जी का। वो पूछ रहे हैं कि क्या एक बार रक्त जांच करवाने से अगर नतीजा पॉजिटिव आया हो तो क्या हम उसे HIV पॉजिटिव मान सकते हैं? भीम सिंह जी, देखिए, अगर पहली बार में ही रक्त जांच में HIV पॉजिटिव आता है तो उसे पॉजिटिव तो माना जाता है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से रक्त जांच ICTC सेंटर से ही करवाएं, जो सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं। यहां आपको पहली रक्त जांच के 3 महीनों बाद दूसरी बार रक्त जांच के लिए बुलाया जाएगा और उपयुक्त काउंसलिंग भी प्रदान की जाएगी।
दोस्तों, यदि आपके मन में भी HIV से या एड्स से जुड़े कुछ सवाल है या कोई भ्रम है तो इन सभी का समाधान है हमारे पास। आप हमें खत लिखकर सही जानकारी हमसे ले सकते हैं।
हम आपके नाम को गोपनीय रखकर आपकी समस्या के समाधान की पूरी कोशिश करेंगे। खत लिखने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम नई दिशा, 177 बेसमेंट, अशोका एनक्लेव 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद 121003, हरियाणा।
और अब समय है ये जानने का कि जीवन की राह में अब जीवन किस मोड़ पर आ पहुंचा है। तो चलिए सुनते हैं रेडियो धारावाहिक जीवन की राह। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि मोहित किसी तरह हिम्मत जुटाकर सुमन की किताब में अपना प्रेम पत्र रख देता है, लेकिन ऐन वक्त पर सुमन आकर उसे टोकती है, मगर वो उसे माफी मांगकर चला जाता है। शीला राजन को अस्पताल जाने की बात कहती है, क्योंकि अब वो दोनों तय कर चुके हैं कि वो एक बच्चे को जन्म देंगे। इसलिए शीला अपनी कॉपर टी निकलवाना चाहती है। राजन उसे अस्पताल ले जाता है। रास्ते में वो प्रधान के घर जाकर उनसे गांव में शिक्षा केंद्र खुलवाने का विचार प्रधान के सामने रखता है।
धनवंती सूरज को फोन से लक्ष्मी के साथ किए गए प्रधान के बर्ताव के बारे में बताती है। सूरज उसे कहता है कि वो कल जयपाल के पास जाएगा, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब आगे।
अरे कौन है भाई, सवेरे सवेरे
सवेरे सवेरे कौन? अरे सूरज। हाँ यार, अंदर आ।
जी तो चाहता है कि तेरे एक जमा के वही गांव वाली स्टाइल का धोबी पाट मारूं।
अरे भाई, बगर हुआ क्या, नाराज क्यों है? अच्छा अंदर तो आजा। अरे अंदर तो आजा यार, बैठ के सुना लेना जो भी खरी खोटी सुनानी है। हाँ
हुआ क्या है? तेरी समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है? जरा अपनी आवाज सुन, कमजोरी तो ऐसे ही झलक रही है। मगर तू तो है जयपाल द ग्रेट, इधर उधर के फालतू कामों के लिए समय होगा तेरे पास, मगर मुझे ये एक बार भी बताने की जरूरत नहीं समझी कि तबीयत खराब है।
अरे यार, अब इतनी भी ज्यादा खराब नहीं है। अच्छा मगर तुझे कैसे पता चला?
बस पता लग गया, किसी ना किसी ने तो बता ही दिया मुझे, लेकिन तुझे इससे क्या, तू तो बताना ही नहीं चाहता था। और अब कान खोल के सुन ले, तुझे चलना है मेरे साथ डॉक्टर के पास, और वो भी अभी के अभी। इसमें मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए।
अच्छा ठीक है ठीक है, कपड़े तो पहनने देगा, ये ऐसे ही चलूं तेरे साथ?
ठीक है, मगर जल्दी करना।
ठीक। नमस्ते डॉक्टर साहब।
नमस्कार। अरे आओ भाई, तुम तो शायद पहले भी मेरे पास आ चुके हो ना?
जी हाँ डॉक्टर साहब, पिछली बार मैंने आप ही से अपना इलाज करवाया था।
तो अब क्या शिकायत आ गई तुम्हें?
जी शिकायत तो वही है डॉक्टर साहब, बस बुखार रहता है। पिछली बार आपने डायरिया की शिकायत बताई थी, पर तब से शरीर उससे उबर नहीं पा रहा है।
मगर उस बात को तो महीने से ऊपर गुजर गया, दवाई तो समय से खा रहे थे ना?
जी हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल समय से खा रहा था, मगर कुछ सुधार ही नहीं लग रहा है, ऊपर से कमजोरी भी बढ़ती जा रही है। मैं तो शायद आ भी नहीं पाता, वो तो भला हो मेरे दोस्त सूरज का, ये मुझे जबरदस्ती ले आया डॉक्टर साहब।
नमस्ते डॉक्टर साहब।
नमस्ते भैया, तुमने अच्छा काम किया कि इसे यहाँ ले आए।
वैसे मुझे भी कल ही पता चला डॉक्टर साहब कि इसकी तबीयत खराब है।
ठीक है, मैं जयपाल का चेकअप कर लेता हूँ। सूरज
जी,
तुम थोड़ी देर बाहर वेट करो।
जी डॉक्टर साहब।
तो भाई जयपाल, जैसा तुम बता रहे हो कि दवाइयाँ तुमने समय से ली हैं, फिर भी तबीयत में सुधार नहीं हुआ।
जी हाँ डॉक्टर साहब।
तो इसका तो सीधा कारण यही है कि दवाई तुम्हारे शरीर में काम ही नहीं कर रही।
अब ये तो मैं नहीं बता सकता डॉक्टर साहब, मगर ये है कि तब से मेरी हालत गिरती जा रही है।
अच्छा जयपाल, ये बताओ कि तुम कोई नशा वगैरह तो नहीं करते हो?
डॉक्टर साहब, कभी कभार दोस्तों के साथ हो जाता है, मगर।
अच्छा तुम पत्नी से दूर रहते हो, तो यहाँ कभी उसकी कमी महसूस होने पर इधर उधर तो नहीं जाते हो ना?
जी मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर साहब।
अरे मेरे कहने का मतलब है कि किसी दूसरी महिला से।
डॉक्टर साहब, हम आदमी परिवार से दूर रहे तो, मगर ये कभी कभार ही होता है डॉक्टर साहब।
मुझे खुशी है कि तुमने सही सही ये बता दिया। देखो जयपाल, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार अपना एचआईवी टेस्ट करवा लो।
एचआईवी टेस्ट? लेकिन डॉक्टर साहब ये टेस्ट क्यों भला?
अरे भाई बस यूँ समझ लो कि मेरे मन का संदेह है, इसलिए कल आकर तुम्हें अपना एचआईवी टेस्ट करवाना है। और घबराने की कोई बात नहीं है, टेस्ट से पहले मैं इस बारे में तुम्हें पूरी जानकारी भी दूंगा।
ठीक है, जैसा आप कहें डॉक्टर साहब।
कल समय से आ जाना।
जी
सुनिए भाई साहब।
जी
यहाँ हॉस्टल में मेरा बेटा रहता है, क्या मैं मिल सकता हूँ उससे?
नाम क्या है आपके बेटे का?
जी विनोद सिंह।
विनोद? आप विनोद के पिताजी हैं?
जी हाँ।
आप शायद गांव में प्रधान हैं?
हाँ वही विनोद, बुला दीजिए उसे।
देखिए अभी तो वो हॉस्टल में नहीं है, आपको इंतजार करना पड़ेगा।
मगर वो है कहाँ, आज तो कॉलेज भी बंद पड़ा है।
अब भाई साहब हम कैसे बता सकते हैं कि वो कहाँ है?
आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, हम लोग आपकी जिम्मेदारी पर अपने बच्चों को घर से यहाँ भेजते हैं और आप कह रहे हैं कि हमें क्या पता?
भाई साहब आप लोगों के बच्चे बस आपकी ही नजरों में बच्चे हैं, यहाँ आके वो अपने आप को बच्चा नहीं मानते। आपका बेटा मेरे साथ कितनी बदतमीजी से बात करता है ये आप देख लें तो आपको लगेगा कि कितना बड़ा बच्चा है आपका।
ये क्या कह रहे हैं आप?
जी सही कह रहा हूँ, आप लोग अपने बच्चों को शहर में पढ़ने तो भेज देते हैं मगर वो यहाँ क्या कर रहे हैं इसके बारे में कभी पता करने की नहीं सोचते। सिर्फ पैसे भेज देने से कुछ नहीं होता, उस पैसे से वो क्या कर रहे हैं ये भी जानना आपकी जिम्मेदारी है।
साफ साफ बताइए भाई साहब, आपने तो मुझे चिंता में डाल दिया है।
चिंता करने की जरूरत है भाई जी, आपका बेटा यहाँ हॉस्टल के बाहर गलत संगत में पड़ा है और उसके साथ ही सभी नशा करने वाले लड़के हैं, आप उसे समझाइए वरना हाथ से निकल जाएगा।
आप सब कुछ जानते हैं फिर भी कॉलेज में इस बारे में शिकायत नहीं करते?
शिकायत? आप जानते हैं कितने खतरनाक लोग हैं वो, अगर मैंने मुंह भी खोला ना तो न जाने मेरे साथ क्या होगा। और ऐसे मामलों में तो भलाई इसी में है कि आप अपने बेटे को समझाइए, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा उसी को है। शायद आपका बेटा सामने से आ रहा है, उसे ये मत बताना कि मैंने आपसे ये सब बोला है वरना मुझसे लड़ पड़ेगा।
अरे पिताजी आप कब आए? प्रणाम।
जीते रहो बेटा, बस तुझे देखने का मन कर रहा था, सोचा पैसे मनी ऑर्डर करने की बजाय खुद तुझे देने आ जाऊं।
इसकी क्या जरूरत थी, आपको परेशानी हुई बेकार, आइंदा से बता के ही आइएगा, बेकार आपको इंतजार करना पड़ा।
अच्छा ठीक है, ये लो बेटा पैसे संभालो। और हाँ तुम्हारी माँ कह रही थी कि ध्यान से खर्च करना।
माँ को तो बस यही लगता है कि मैं यहाँ आपके पैसे उड़ा रहा हूँ, शहर में कितना खर्चा होता है मुझे ही पता है।
अच्छा ठीक है। अच्छा बेटा बाहर छोड़ने नहीं चलोगे?
चलिए ना पिताजी, कैंटीन में चाय पिलाता हूँ आपको।
बेटा विनोद।
जी पिताजी।
ये बताओ कि तुम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे ना जिससे तुम्हारे पिता का नाम बदनाम हो?
मतलब आपसे किसी ने कुछ कहा है क्या?
नहीं मैं बस ऐसे ही जानना चाहता हूँ।
मुझे पता है उस वार्डन ने ही कुछ कहा होगा आपसे।
हाँ हाँ कहा है, उसी ने कहा है, मगर मैं तुझसे जानना चाहता हूँ कि इस बात में कितनी सच्चाई है।
सब झूठ है पिताजी, दरअसल वो वार्डन सभी से जेब खर्च के लिए पैसे मांगता है, मुझसे मांगे तो मैंने मना कर दिया, इसलिए मुझसे चिढ़ा हुआ है। आप कहो तो उसे सामने बुलाकर सारा दूध का दूध और पानी का पानी कर दूं?
नहीं नहीं रहने दे, मुझे भरोसा है तुझ पर। और उसे कभी कभी जेब खर्च के लिए दे दिया कर पैसे, ये छोटे लोग हैं इन्हें अपने साथ मिलाकर रखना चाहिए, अरे काम आते रहते हैं। चलो भाई मेरा तो जाने का समय हो रहा है, बस तुझे देखने का मन था देख लिया, अब चलता हूँ।
ठीक है पिताजी, माँ को प्रणाम कहना।
ठीक है बेटा।
आ गए आप, क्या बात है मास्टर जी, आजकल आप बड़ा बाहर रहने लगे हैं।
अब क्या बताऊँ शीला, ये प्रिंसिपल साहब का बस चले तो मुझे या तो स्कूल से ही निकलवा दें या फिर अपने साथ ही बिठा कर रखें। अरे कभी तो लगता है कि इनकी आंख का सबसे बड़ा कांटा मैं हूँ, और कभी ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे मैं ही इनका दत्तक पुत्र हूँ।
मतलब ये क्या आप अभी तक स्कूल में ही थे?
अरे हाँ, रोक कर जो रखा था उन्होंने, ग्रामीण विकास के बारे में बात चल रही थी तो लगे तरह तरह की योजनाएं बनाने, मैंने भी अपना विकास केंद्र खुलवाने का आइडिया उन्हें दे दिया और ये आइडिया उन्हें इतना पसंद आया कि इसी पर घंटों बात चलती रही। बेचारा स्कूल का चपरासी भी चाय ला लाकर परेशान हो गया।
वैसे परेशान होने के दिन आपके भी आने वाले हैं मास्टर जी।
मेरे परेशान होने के दिन? मैं समझा नहीं शीला।
हाँ अब थोड़े ही समझ आएगा आपको।
साफ साफ बोलो तो समझ में आए।
साफ साफ ये कि अब आपको मेरे साथ हर महीने अस्पताल जाना होगा चेकअप करवाने।
चेकअप करवाने? क्यों, क्या हुआ है तुम्हें?
आप पिता बनने वाले हैं मास्टर जी।
क्या, अरे वाह।
और बच्चे की जिम्मेदारी संभालने के लिए कमर कस लीजिए।
भाई तुमने तो दिन भर की थकान दूर कर दी खुशखबरी सुनाकर।
अच्छा बताओ क्या चाहिए तुम्हें मुझसे?
नहीं नहीं मास्टर जी, अब कुछ और नहीं चाहिए। ये जो नया मेहमान आने वाला है ना, अभी तो यही बहुत परेशान करने वाला है।
मगर एक बात से मुझे चिंता हो रही है, ये बात हम सुमन को कैसे बताएंगे?
उसे बताने की क्या जरूरत है, जब नया मेहमान आएगा तो खुद ब खुद पता चल जाएगा।
मगर कहीं उसे ये सब अच्छा नहीं लगा तो? और वैसे भी वो तो यही सोचती है कि मैंने आपको उससे अलग कर दिया है, ऐसे में एक नया मेहमान घर में आएगा तो उसे न जाने कैसा लगे।
कैसा लगे से क्या मतलब, उसे खुशी होगी, आखिर उसे भी तो एक साथी मिल जाएगा ना खेलने के लिए।
काश कि सुमन भी ऐसा सोचे। अरे सुमन बेटी, तुम कब आई?
ये क्यों रो रही सुमन? इधर आओ सुमन, सुमन
आंखों में छुपा ले, दिल में बसा ले, सीने से अपने लगा ले, लगा ले, कस के उठी मेरे मन में प्यार।
और दोस्तों अब वक्त है क्या किया जाएगा।
दोस्तों क्या किया जाए में इस बार हम जिस वास्तविक घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है दिल्ली शहर के रोहिणी क्षेत्र की, जहां एकमात्र 28 साल के युवा को एचआईवी पॉजिटिव पाया गया। और फिर क्या, यार दोस्त रिश्ते नातेदार सब दूर, और अज्ञानता की हद तो देखिए कि परिवार वालों ने भी ऐसे मौके पर उसका साथ छोड़ दिया। और कारण बस यही कि एचआईवी के बारे में तमाम तरह के भ्रम।
अब आप ही सोचिए दोस्तों, जब दिल्ली जैसे शहर में ये हाल है तो देश के छोटे हिस्सों में क्या होगा। मगर उस नौजवान की हिम्मत देखिए, उसने हार नहीं मानी। वो आज एक प्राइवेट फर्म में नौकरी कर रहा है, साथ ही कुछ जागरूक दोस्त भी उसके साथ आए और यथासंभव उसकी मदद भी की।
आज भले ही उस नौजवान को ये नहीं पता कि कल क्या होगा, मगर उसका कहना है कि कल की चिंता में आज क्यों घुला जाए। और वैसे भी इस दुनिया में कौन अपने बारे में ये बता सकता है कि कल उसके साथ क्या होगा।
बीती ताहे बिसार दे, आगे की सुध ले, इसी को जिंदगी कहते हैं दोस्तों। और हर हाल में जो हार ना माने वही होता है इंसान, और उसी के पास होता है जीने का जज्बा।
और जाते जाते हम आपको बता दें कि आईडियो सिंह मीडिया कंबाइन द्वारा निर्मित इस कार्यक्रम का संचालन अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से हो रहा है। और साथ ही हम आभारी हैं अपने साथियों हेवलवानी सामुदायिक रेडियो, मंदाकिनी की आवाज और दिल्ली मुंबई के हमारे सभी सामुदायिक संवाददाताओं के। तो दोस्तों अब आ चुकी है विदा लेने की घड़ी, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।